Subress.
On demand. Follow Subress Radio on Twitter and Facebook now.
हेल्थ मैटर आई मीन मिड मॉर्निंग शो लाइफ स्टाइल आवर. आज सोमवार है तो हेल्थ मैटर्स की हम बात करते हैं और हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर राजीव वाधवा जी. तो उनको हम वेलकम बैक कहते हैं, रादर देन वेलकम हम आपको वेलकम बैक कहते हैं. आपका एक बार फिर से स्वागत है और अच्छा लग रहा है कि आप जल्दी जल्दी लौट कर आ गए हैं एक हफ्ते की लंबी सी जुदाई के बाद. सो वेलकम बैक. एंड कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक अंबर जी, गुड मॉर्निंग आपको भी और सभी सुनने वालों को भी.
चलिए सबकी तरफ से आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. एंड कैसा रहा वीकेंड? आई होप इट वाज ऑल फाइन.
जी
या और अच्छी बात है कि वीकेंड पर मौसम जरा न्यूट्रल रहा, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं थी. लेकिन क्योंकि अब जो है हे फीवर का मौसम एक तरह से वाकई सही मायनों में आ गया है. जरा सा बाहर निकले नहीं, छींकें आनी शुरू हो जाती है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है. तो ये सारी चीजें जो है हे फीवर का आज हम शुरू कर लेते हैं. मगर जैसे अभी बात हो रही थी आपसे कि एक सवाल पहुंचा है जो टॉपिक पर तो नहीं है लेकिन जरा अलग हटकर है. तो ये सवाल जो हमने आपको बताया तो अगर शुरू में ही उसको कर लें.
बिल्कुल जी. तो किसी ने सवाल पूछा है कि उनका नाक की सेप्टोप्लास्टी, तो सेप्टोप्लास्टी का मतलब होता है कुछ लोगों की नाक का जो बीच की हड्डी होती है दो तरफ की नॉस्ट्रिल्स के बीच में, उसको नेजल सेप्टम कहते हैं. वो कुछ लोगों में काफी इसको कहते हैं डिविएटेड, तो वो टेढ़ी होती है, मुड़ी हुई होती है. तो वो आमतौर पर तकलीफ नहीं देती है और छोटी मोटी अगर जरा सी मुड़ी हुई है तो उसके लिए उसका ऑपरेशन वगैरह नहीं सलाह दी जाती है, करानी चाहिए. और इंग्लैंड में एनएचएस पर वो उसको नहीं करते हैं अनलेस कि उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो. लेकिन किसी किसी में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उससे, तो उनके नाक के सिम्टम्स काफी होते हैं, ब्लॉकेज और वगैरह वगैरह. तो कई बार फिर स्पेशलिस्ट देखकर बताते हैं कि हाँ ऑपरेशन करना चाहिए. तो किसी का सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि उनको डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करने के लिए और वो वेट कर रहे हैं कि ऑपरेशन की डेट के आने का, और पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं. तो अब उनकी उनको क्या प्रॉब्लम्स थी, उनकी क्या हिस्ट्री है वगैरह, तो ज्यादा डिटेल में पता नहीं है. लेकिन आमतौर पर मेरी यही सलाह होती है कि जब भी आपने अगर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया है, किसी सर्जन ने आपको आपको जब ऑपरेशन के बारे में सलाह दी होगी तो जरूर आपको बताया होगा कि इससे क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं. और फिर फायदे और नुकसान दोनों को देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं. तो अगर आपके कंसल्टेंट और आपने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हाँ ये ऑपरेशन कराना ठीक है आपके लिए, तो फिर अब जब आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो कन्फ्यूज ना हो, तो जो आपने डिसीजन लिया है उस पर कायम रहें. अगर और आपके कोई सवाल है कि आपको और कोई उसमें कंफ्यूजन है, कोई और नई चीज आपको पता लगी है या आपको जानना चाहते हैं, तो आप अपने कंसल्टेंट को की सेक्रेटरी को फोन कर हॉस्पिटल में आप उनके पास ये सवाल छोड़ सकते हैं, तो वो फिर आपको जवाब दे सकते हैं इसका.
ओके. क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि द पर्सन हैज एक्चुअली बीन सफरिंग सिंस चाइल्डहुड.
जी जी.
एंड 2008 से कुछ ज्यादा बढ़ गया है एंड नाउ द एज इज 54. मतलब ये इतना लंबा अरसा चलती है चीज.
तो अगर वो अगर ये मैं उन्होंने लिखा नहीं है कि ऑपरेशन क्यों होना है, मान के मैं चल रहा हूं कि अगर ये सेप्टोप्लास्टी होनी है तो उनका जो सेप्टम जो नाक की जो हड्डी है बीच की वो टेढ़ी है, तो वो तो टेढ़ी तो फिर बचपन से ही होती है, वो अपने आप तो नहीं ठीक होती है. और अधिकतर लोगों में जैसा मैंने कहा जरूरत भी नहीं होती है कोई ट्रीटमेंट की, उसके कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है उससे थोड़े बहुत होने से. लेकिन अगर उनकी बहुत ज्यादा रही है और सिम्टम्स बहुत ज्यादा उसकी वजह से बढ़ गए हैं तभी डॉक्टर ने डिसाइड किया होगा ऑपरेशन करने का, तो मेरे ख्याल से फिर उनको अपने डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए. जी.
ओके. और आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से याद दिला दें, क्योंकि कई बार ये होता है हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे होते हैं वो टॉपिक इतना लंबा खींच जाता है कि वक्त रहते हम नहीं आ पाते दूसरे सवालों की तरफ. तो अगर वो डायरेक्ट ईमेल कर दें health@subressradio.com.
जी, ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं. तो मैं प्रोग्राम के बाद देख ही लेता हूं कि क्या क्वेश्चन आए थे, तो उनको इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते उसका जवाब दिया जा सकता है.
जी बिल्कुल. लेकिन ईमेल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर वो पहले से आपको भेज दें तो जब आप आते हैं तो आपके पास ऑलरेडी वो सवाल होंगे.
जी
तो टाइम बचेगा हमारा भी उनका भी.
जी.
ओके. तो चलिए अब हे फीवर की तरफ आ जाते हैं. और उनका थैंक यू मैसेज आ गया है और इनका कहना है कि यस कंसल्टेंट हैज डिसाइडेड टू गो फॉर सर्जरी टू. सो यू हर्ड द आंसर. सो एनीथिंग एल्स आई सजेस्ट यू कैन ईमेल डॉक्टर साहब डायरेक्टली एट health@subressradio.com. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट. तो चलिए हे फीवर की अब बात शुरू करते हैं.
जी अमर जी, तो पिछले हफ्ते हमने हे फीवर का डिस्कशन शुरू ही किया था, पूरा काफी नहीं हो पाया। तो हे फीवर, जैसे हमको पता है कि ये जब ये स्प्रिंग बसंत का मौसम इस देश में शुरू होता है और फिर गर्मियों से लेकर काफी समय तक ये परेशानी रहती है, तो इसमें जिन लोगों को ये तकलीफ होती है उनको छींके आती हैं, नाक उनका बहता बहुत है या कई बार ब्लॉक भी रहता है, गले में भी उनको थोड़ी तकलीफ होती है, आंखों में खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकती है, आंखों से पानी आ सकता है, आंखों में लाली आ सकती है, तो ये सब तकलीफें होती हैं, और नाक के अंदर भी खुजली सी काफी होती है, गले में भी जैसा मैंने बताया ये तकलीफ होने लगती है, और कई बार अगर बहुत सीरियस काफी प्रॉब्लम होती है तो फिर सिर दर्द हो जाता है, बुखार लगने लगता है कि जैसे काफी तेज बुखार है, इसीलिए इसको हे फीवर कहते हैं। तो ये पोलेंस की वजह से होता है, जो पेड़ों के घास के और दूसरे पौधों के जो बीज जो फर्टिलाइज करने के लिए फैलते हैं उससे ये होता है। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिखते नहीं है, हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी नाक में और गले में जाते हैं, तो उससे फिर जिन लोगों को उससे एलर्जी होती है उनको ये तकलीफ होती है। तो इसमें आमतौर पर ग्रास पॉलन जो होता है सबसे कॉमन कॉज होता है, घास का जो बीज होता है, और वो मई से लेकर जुलाई तक होता है, लेट स्प्रिंग से लेकर अर्ली समर तक। लेकिन ट्री पॉलन्स भी होते हैं, पेड़ों के भी होते हैं, तो वो मार्च से मई तक, तो कई बार लोगों को जल्दी शुरू हो जाता है मार्च में अर्ली स्प्रिंग में, और फिर जो और वीड्स होती हैं, नेटल्स हैं या जो और घास पतवार जो उगाती है उससे भी पॉलन्स होता है, और वो स्प्रिंग से लेकर अर्ली ऑटम तक, सितंबर अक्टूबर तक चलता रहता है। तो इसका कोई हर किसी का, जिन लोगों को किसी खास पोलन से, किसी खास बीज से एलर्जी है, तो उनको तो टाइम होता होगा कि ये इस महीने से लेकर इस महीने तक तकलीफ उनको होती होगी, लेकिन कुछ लोगों को ये काफी लंबा चलता है। तो यूके में जैसा मैंने पिछली बार बताया 20% लोगों को ये बीमारी हो सकती है, तो काफी लोग इसमें परेशान होते हैं, और कई बार ये अधिकतर स्कूल एज में शुरू होता है, तो जब छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाना शुरू करते हैं या तो थोड़ी और आगे टीनेज की उम्र में, तब उनको ये बीमारी शुरू होती है और ठीक हो जाती है अपने आप जब सीजन उनका खत्म होता है, जिस सीजन उनको एलर्जी है उसका सीजन खत्म होता है, तो और फिर अगले साल फिर आती है। कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे कुछ सालों बाद, खासतौर पर बच्चों में, वो जो है कुछ सालों बाद अपने आप धीरे धीरे उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है और ये काफी या तो कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म भी हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये हे फीवर चलता रहता है और पूरी उम्र रहता है, तो हर साल उनको पता है कि हर साल ये मुझको होना ही है। हे फीवर जो होता है दूसरी कंडीशन से रिलेटेड होता है, तो एक्जिमा है, अस्थमा है, उससे जो है हे फीवर से मिलती जुलती उसके मैकेनिज्म्स होते हैं, तो कई लोगों को ये होता है। तो जिन लोगों को एक्जिमा है, अस्थमा है, उनको हे फीवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनको हे फीवर है हो सकता है उनको उन बच्चों को एक्जिमा या अस्थमा भी हो, तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और फैमिलीज में भी चलते हैं, तो कई बार किसी फैमिली मेंबर को एक को है तो हो सकता है ये बीमारियां तीनों दूसरों को भी हों। हमने बात की कि इसका डायग्नोसिस पिछली बार कैसे किया जाए, तो इसका कोई टेस्ट नहीं करना होता है, हमें कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, कोई एलर्जी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है आमतौर पर, और ये सिर्फ बातचीत से पता चल जाता है कि आपको ये हे फीवर है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि या तो कंफ्यूजन हो कि ये हे फीवर है कि नहीं, जो कि बहुत कम होता है, या बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो कि बिल्कुल वो दवाइयों से ठीक ही नहीं हो रही है, तो फिर हम आपको स्पेशलिस्ट के पास रिफर करते हैं, और वो स्पेशलिस्ट तब कई बार टेस्ट वगैरह करते हैं देखने के लिए कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है ट्रीटमेंट से। वरना आम तौर पर अधिकतर लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को, इसमें कोई ब्लड टेस्ट या कोई और टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो यहां तक इतनी डिस्कशन हमने पिछली बार की थी, तो मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं और फिर आगे का डिस्कशन अगले पार्ट में शुरू करते हैं।
बिल्कुल, और अगर हमारे किसी भी श्रोता के पास कोई भी सवाल हो तो हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, आप अपने सवाल जो हैं अभी वक्त रहते पहुंचा दीजिए, प्लीज लास्ट मोमेंट सवाल मत भेजिएगा, क्योंकि उस वक्त फिर हम शामिल नहीं कर पाएंगे, फिर आप कहेंगे हमने सवाल भेजा था हमारा सवाल शामिल नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल आज के आज शामिल हो तो आप फौरन से जल्द अपना सवाल भेज दीजिए 07564984152, दैट 07564984152। थैंक यू, और आपका सवाल जितनी जल्दी हमारे सामने आएगा हम उतनी जल्दी डॉक्टर साहब के सामने रख पाएंगे। چلیے لوٹ کر آتے ہیں اس طرف اور اب ہم ایک بار پھر سے ڈاکٹر صاحب کی طرف آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر راجیو وادھوا جی ہمارے سامنے موجود ہیں اس سمے جیسے کہ وہ ہر سوموار کو آیا کرتے ہیں صبح 11 سے 12 کے بیچ اپنا قیمتی سمے نکال کر آتے ہیں اور ہمارے شروتوں کے لیے اتنی ساری جانکاری لے کر آتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیتے ہیں جو وقت رہتے ہمارے پاس پہنچ جائیں. میں فون کی جگمگاتی ہوئی بتیوں کو دیکھ کر کے اتنا ہی کہنا چاہوں گی 07564984152 واٹس ایپ کا نمبر ہے. فون کرنا ہو تو 11 سے پہلے کر دیا کریں اور ای میل بھیجنا چاہیں تو health@sabrasradio.com یا خط بھیجنا چاہیں تو سبرس ریڈیو 63 میلٹن روڈ لیسٹر LE46PN خط پر مڈ مارننگ شو امبر یا پھر ڈاکٹر لکھ دیں گے تو بھی آپ کا خط جو ہے ڈاکٹر صاحب تک پہنچ جائے گا. اوکے ڈاکٹر صاحب تو جہاں بات کو چھوڑا تھا وہیں سے پک کر لیتے ہیں.
جی تو علاج کی طرف آتے ہیں بجی. تو ہے فیور کے بارے میں ہم نے بات شروع کی کہ کیا ہوتا ہے اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے اور اب ظاہر ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے. تو اس کا ایک علاج جو کامن سینس کہتی ہے کہ بھائی یہ پولن سے ہوتا ہے تو اگر ہم پولن سے بچیں تو یہ تکلیف نہیں ہوگی ہم کو, جو کہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن مشکل ہے کیونکہ پولن سے نہ بچے, پولن تو باہر آپ نکلیں گے تو ہوا میں ہے اور آپ کو دکھنا بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے بچ سکیں. تو اس سے بچنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کھڑکی دروازے بند کر ایئر کنڈیشنر چلا کر گھر کے اندر بیٹھے رہیں, باہر نہ نکلیں تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی. لیکن وہ تو سمبھو نہیں ہے. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں, کچھ ٹرکس ہیں, کچھ کامن سینس کے جنرل آئیڈیاز ہیں کہ جن سے جو ہے ہم بچ سکتے ہیں. تو آپ اپنا ایکسپوجر کم کر سکتے ہیں کچھ چیزوں سے. پولن میں آپ ٹی وی پر, ریڈیو پر, انٹرنیٹ پر, نیوز پیپر وغیرہ میں, ویدر فور کاسٹ میں پولن کاؤنٹ بتایا جاتا ہے کہ پولن کتنا چل رہا ہے اس سمے. تو وہ میٹ آفس کی ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ جسٹ پولن کاؤنٹ سرچ کریں گوگل میں انٹرنیٹ پر تو ویب سائٹ سامنے آ جائے گی اور اس میں آپ ایسٹ میڈلینڈز ڈالیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو ابھی میں نے یہاں آنے سے پہلے چیک کیا تو آج جو پولن کاؤنٹ ہے ایسٹ میڈلینڈز میں کافی ہائی ہے. کل اور اگلے ایک دو دن کچھ میڈیم ہے. تو وہ موسم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا موسم ہے, کتنی ہوا چل رہی ہے, بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وغیرہ. تو آپ کا پولن فور کاسٹ دیکھیں اور اگر بہت ہائی ہے تو آپ ٹرائی اوائڈ کریں کہ باہر, اگر بہت ضروری نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے تو آپ اگر بچ سکیں تو نہ جائیں. کھڑکیاں دروازے بند رکھیں. کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کام پر آپ باہر نہیں گئے ہیں لیکن آپ نے دروازے سب کھولے ہوئے ہیں, کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ناک کے ارد گرد ویسلین یا اس طرح کی کوئی چیز لگا لیں کیونکہ پولن, جیسا میں نے کہا, آپ سانس لیتے ہیں تو ناک سے اور منہ سے, تو اس ہوا جو آپ کے اندر جاتی ہے اس میں پولنس ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ویسلین ناک کے آس پاس لگا لیں تو پولن جو ہوتا ہے وہ اس میں ویسلین میں پھنس جائے گا, وہ اندر کم جائے گا, تو کچھ لوگوں کو اس سے تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ہے فیور کی تکلیف ہے, پولن کاؤنٹ ہائی ہے یا میڈیم یا لو بھی ہے, لیکن اگر آپ کو کافی تکلیف ہے تو آپ پھر کام پر آنا جانا تو ٹھیک ہے, ضروری ہے, لیکن اوائڈ کریں کہ باہر نہ جائیں. تو اب آپ گارڈن میں جا کر گھاس کاٹنے کو اوائڈ کریں کیونکہ اس سے کافی زیادہ پولن ہوگا. آپ گھاس کے بڑے میدانوں میں واک کرنے, اس طرح کی چیزیں اوائڈ کریں کہ آپ نہ کریں. کیمپنگ وغیرہ پر نہ جائیں. فریش فلاورز مطلب لوگوں کو, اگر آپ کے گھر کوئی آ رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کے لیے فلاورز لے کے جاتے ہیں, تو اگر آپ جانتے ہیں کسی کو کہ ان کو ہے فیور کی تکلیف ہے تو پھر آپ ان کے گھر پر فلاورز وغیرہ نہ لے کر جائیں, آپ اپنے لیے بھی مت لائیں, گھر پر نہ رکھیں. اس کے علاوہ آپ باہر سے جب آتے ہیں تو آپ کے بالوں میں, آپ کے کپڑوں میں, آپ کے شریر پر پولن کافی ہوتا ہے. تو اگر خاص طور پہ اگر آپ کوئی کنٹری سائڈ میں, کسی گھاس وغیرہ والی جگہ میں, کھیتوں میں سے واک کرتے ہوئے آئے ہیں تو آپ اگر شاور کر سکتے ہیں, اپنے بال دھو سکتے ہیں, تو اس سے پولن کاؤنٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اگر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آنکھوں پر, خاص طور پر جن لوگوں کو آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے, تو وہ ریپ اراؤنڈ سن گلاسز ہوتے ہیں, جو چشمے ہوتے ہیں وہ کافی بڑے سے ہوتے ہیں اور وہ کان کی طرف کو بھی جاتے ہیں آنکھ سے, سائڈ سے, تاکہ سائڈ سے اور سامنے سے پولن آپ کی آنکھوں پر نہ جائے, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ کار پر جا رہے ہیں تو کار کی کھڑکی جو ہے اس کو بند کر سکتے ہیں. اسپیشل فلٹر آتے ہیں, پولن فلٹر آتے ہیں, جو کار کے جو پنکھے ہوتے ہیں, وینٹس ہوتی ہیں, اس میں لگتے ہیں, تو وہ آپ لگوا سکتے ہیں. ان کو ریگولر ہر بار, ہر سال چینج کرنا ہوتا ہے, تو اس کا آپ دھیان رکھیں. گھر میں آپ वैक्यूमिंग थोड़ी करें, धूल मिट्टी कम रखें तो उससे फर्क पड़ता है, और आपके जो टेबल या और दूसरी सर्फेसेज हैं उनको आप हल्के गीले कपड़े से, डैम्प क्लोथ से अगर पोंछें तो जो पॉलन अगर उस पर लेयर बनी है तो वो गीले कपड़े के साथ साफ हो सकती है। अब एक स्पेशल फिल्टर आते हैं, HEPA फिल्टर उनको कहते हैं, हेपा फिल्टर्स, और वो उसके वैक्यूम क्लीनर कुछ अलग होते हैं, या आपका जो वैक्यूम क्लीनर है आप देखें कि उसमें वो हेपा फिल्टर है कि नहीं, और उससे अगर आप वैक्यूमिंग करें तो उससे भी फर्क पड़ता है। जिन लोगों के घर में पेट्स हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली वगैरह हैं, और उनको आप थोड़ा देखें कि वो बाहर घास में घूम कर आ रहे हैं या बहुत खेल कर आ रहे हैं किसी फील्ड वगैरह में, और फिर वो घर के अंदर जब आएंगे तो जाहिर है कि पॉलन उनके साथ आएगा, तो उससे भी आपको तकलीफ हो सकती है, तो उसको आप जितना संभव हो उससे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो करें। और लास्ट, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या उनके घर में दूसरे लोग स्मोकिंग करते हैं और वो स्मोक वाले कमरे में रहते हैं तो उनके सिम्टम्स जो होते हैं वर्स होते हैं, तो आप घर के अंदर स्मोकिंग ना करें। आप स्मोकिंग करते हैं तो कोशिश करें कि उसको छोड़ने की कोशिश करें, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपके घर में दूसरे लोग हैं तो आप कोशिश करें कि उनके सामने स्मोकिंग ना करें, या उस कार में, उस कमरे में स्मोकिंग ना करें। तो ये तो जो कॉमन सेंस जनरल चीजें हैं बिना दवा के कि आप कैसे थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा ये तो पूरा संभव नहीं है कि कोई दो तीन महीने के लिए घर से बाहर ही ना निकले, घर में बैठ जाए, तो ये लिमिटेड बेनिफिट इन चीजों का है। इसके बाद दवाइयों की तरफ आते हैं। काफी कॉमन दवाइयां हैं जिनको तकलीफ है वो जरूर लेते ही हैं, हर साल लेते होंगे। इस साल से थोड़ा सा, बल्कि पिछले साल से है, इस साल से थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट है। थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि NHS में जो हे फीवर की कॉमन दवाइयां हैं जो आप केमिस्ट से बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं, चाहे वो सिट्रिजीन या लोराटिडीन वगैरह टैबलेट्स हैं, या नाक में डालने के जो ड्रॉप्स हैं, या आंखों में डालने की दवाएं हैं, तो नाक के जो स्प्रे हैं, ये दवाइयां जो हैं, अगर आप जो 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 ब्रांड्स आपको केमिस्ट से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं तो उसका अब प्रिस्क्रिप्शन NHS ने, हम लोगों को GPs को मना किया है कि उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं दें। पिछले कई सालों से ट्रेडिशन है, हम लोग हर साल करते आए हैं कि हे फीवर के सीजन में बहुत से लोग आते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेने। पिछले सालों में मैंने ये प्रोग्राम किया तो तब मैंने ये कहा था कि अगर आप हर साल ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको हर साल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप रिसेप्शन पर बता दें और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो ये पिछले साल की बात थी। इस साल से तो आपको प्रिस्क्रिप्शन अधिकतर सर्जरीज नहीं ही देंगी, तो क्योंकि ये उनकी सर्जरी ने नहीं किया है ऐसा, ये NHS से ऑर्डर है ऐसा। तो अगर ऐसा होता है तो आप अपने रिसेप्शनिस्ट से या अपने GP से नाराज नहीं हो, वो आपके लिए कोई ऐसी दवा बंद नहीं कर रहे हैं। ये NHS से ऐसा आदेश आया है कि उसको प्रिस्क्राइब ना किया जाए। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप दवा ना लें, दवा आप लें, लेकिन आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, आप केमिस्ट से डायरेक्ट उसको खरीद सकते हैं। तो जिन लोगों को फ्री प्रिस्क्रिप्शन मिलता था उनको फिर अब थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, या बेनिफिट्स पर हैं, या डायबिटीज के मरीज हैं जिनको प्रिस्क्रिप्शन फ्री मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दवाएं आपको फिर भी खरीदनी पड़ेंगी सबके लिए।
इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल तो नहीं है, खैर स्टेटमेंट ही हम कह सकते हैं, क्योंकि पूछा इन्होंने कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कहा है कि इनके बेटे को पिछले 9 साल से, बेटे की उम्र नहीं लिखी है, द एज इज नॉट मेंशन्ड, जस्ट इट जस्ट सेज दैट द पर्सन सन हैज हैड हे फीवर फॉर लास्ट 9 years विंटर टाइम ऑनवर्ड्स, एंड डॉक्टर सेज कोल्ड है, कोल्ड या हे फीवर, इवन दैट इज नॉट क्लियर, एंड कोल्ड हे फीवर एंड इन समर टाइम हे फीवर, एंड डॉक्टर हैज गिवन सिट्रिजिन ऑल द टाइम, and in, that's for last 9 years. So I don't really see a question, but I guess that's just a statement.
जी होता है ऐसा। कई मरीज होते हैं जिनको, जैसा हमने बताया, ये एलर्जी जो होती है ये कुछ लोगों को काफी लंबे समय तक चलती है, उनको डिफरेंट पॉलन से एलर्जी है, और हम हे फीवर कह देते हैं, कई बार हे फीवर नहीं किसी और चीज से एलर्जी होती है, डस्ट माइट से एलर्जी होती है और चीजों से भी एलर्जी होती है, तो उसमें भी हे फीवर जैसे सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें आपको जो है ट्रीटमेंट यही है, सिट्रिजिन है जो कॉमनली बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट से मिलती है, और नाक के स्प्रे उसमें होते हैं, अगर आंखों में तकलीफ होती है तो आंखों में डालने के ड्रॉप्स होते हैं। तो ये सभी दवाइयां केमिस्ट से फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली माने फ्री नहीं, फ्रीली अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाती हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन की जहां तक मैं बात कर रहा था, तो अगर प्रिस्क्रिप्शन जिन लोगों को कई सालों से मिलते आ रहे हैं, हम लोग भी देते थे, इस साल से वो धीरे धीरे अब बंद होने शुरू हो जाएंगे, तो उसको आप मानकर चले। तो ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग आते हैं। तो ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया, जो पहला ट्रीटमेंट है वो टैबलेट्स हैं, नाक के स्प्रे हैं, आंखों में डालने वाली दवाइयां हैं। तो जो टैबलेट्स हैं एंटीहिस्टामिन, जो हमने बताया एलर्जी होती है तो एलर्जी हिस्टामिन की वजह से होती है, तो जो एंटीहिस्टामिन दवाइयां होती हैं जिन्हें आम भाषा में हम एंटी एलर्जिक दवाइयां कहते हैं या एंटीहिस्टामिनिक मेडिकेशंस कहते हैं, तो वो गोलियां भी हो सकती हैं या बच्चों के लिए पीने की दवाई भी हो सकती हैं, लिक्विड्स भी हो सकती हैं, सेम दवाएं हैं। तो इसमें जो है ये काफी सिम्टम्स को फायदा पहुंचाती हैं, छींकों को कम करती हैं, जो पानी वगैरह आ रहा है नाक से या आंखों से उसको कम करती हैं। जब नाक बंद हो जाता है उसमें इनका उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बाकी सिम्टम्स में ये काफी। तो ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सबको यूज करना चाहिए जिनको भी हे फीवर से या इससे मिलती जुलती परेशानी होती है। तो इसके बारे में ब्रेक के बाद और इन टैबलेट्स के बारे में, इन दवाओं के बारे में और बात करते हैं अंबर जी।
ठीक है, एक तो सवाल भी है, तब तक ब्रेक के दौरान आप ये सवाल भी देख लीजिएगा। और अब हम लौट कर आएंगे अपने गोल्डन सॉन्ग के बाद, क्योंकि गोल्डन सॉन्ग की तरफ हम जाएंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। तो आप आसपास रहिएगा और अपने सवाल आप 12:45 तक भेज सकते हैं, 11:45। उसके बाद health@sabrasradio.com डायरेक्ट डॉक्टर साहब को ईमेल कर सकते हैं आप। थैंक यू। तो चलिए डॉक्टर साहब, बातचीत को जहाँ छोड़ा था वहीं से पिक करते हैं, और एक सवाल जो एक तो सवाल बीच में रहे वो भी मैंने आप तक पहुंचा दिए।
जी जी, तंबर जी एक सवाल आया था, काफी उन्होंने काफी डिटेल में लिखा है लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि रात के समय उनको जो है नाक जो है ब्लॉक हो जाता है, और ये कई सालों से ये तकलीफ चली आ रही है और पूरे साल चलती है, और उन्होंने ये जो एंटीहिस्टामिन गोलियां वगैरह हैं वो ली हैं, उससे फायदा नहीं हुआ है। तो मेरी सलाह यही है कि अगर कई सालों से कोई तकलीफ है और वो पूरे साल चल रही है तो अनलाइकली है कि शायद ये हे फीवर ना हो, कुछ और हो, तो आप जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं, और इतने सालों से अगर चल रही है तो आपके डॉक्टर इसमें और दवाइयां ट्राई करेंगे, और अगर उससे भी फायदा नहीं होता है तो फिर हो सकता है आपको स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत पड़े। तो और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने जीपी से इस बारे में जरूर मिलें। तो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो जैसा हमने बताया, एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामिन जो दवाइयां हैं, टैबलेट्स हैं या उसके सिरप भी आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, वो भी सेम चीज होती है। तो वो क्वाइट कॉमनली सबसे पहले हम लोग लेते हैं। इसमें दो ग्रुप होते हैं, नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन दो ग्रुप होते हैं मेनली। एक होता है जो पुरानी दवाइयां हैं जो कई पिछले 50-60-70 सालों से चली आ रही हैं, जो जैसे पिरिटोन है, क्लोरफेनामीन जिसे कहते हैं, एट्रैक्स है, फेनरगान है, ये सब पुरानी काफी दवाइयां हैं। ये काफी इफेक्टिव हैं, काफी अच्छी स्ट्रांग एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन दवाइयां हैं ये। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका साइड इफेक्ट होता है, इनसे नींद बहुत आती है अधिकतर लोगों को, सबको नहीं आती, सब लोग लेंगे, 100 लोग लेंगे तो अधिकतर को आएगी नींद, कुछ को हो सकता है ना भी आए। तो जिनको इससे नींद आती है, जिन्होंने कभी पहले ट्राई नहीं किया है तो मान के ही चलें कि इससे नींद आती है, तो वो उनको फिर इससे तकलीफ होती है, आप दिन में काम नहीं कर सकते हैं, आपको ड्राउजीनेस रहती है, खासतौर पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या आप कोई ऐसा हाई रिस्क वाला काम कर रहे हैं, कोई मशीनरी वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें चोट लगने की चांस हो सकता है, तो जाहिर है कि फिर आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए उस समय, या अगर दवा ली है तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए। तो दूसरा ग्रुप है जिसे हम नॉन सिडेटिंग एंटी एलर्जिक या नॉन सिडेटिंग एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं। ये रिलेटिव अब तो नई नहीं है, रिलेटिवली पुरानी दवाइयों के मुकाबले में ये नई है। तो ये सिट्रिजीन है, लोराटिडीन है, फैक्सोफेनाडीन है, और भी काफी हैं। तो इनसे अधिकतर लोगों को नींद नहीं आती, कुछ लोगों को इनसे भी आती है, तो ये 100% श्योर नहीं है कि इससे आपको नींद नहीं आएगी. कई मरीज हैं जो जिनको इनसे भी नींद आती है. तो अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो जरूर या तो आप रात के समय लें या आप लेकर पहले देखें कि आपको ड्राउजीनेस तो नहीं हो रही है, तब आप कोई ऐसा ड्राइविंग करने के लिए या कोई मशीन ऑपरेट करनी है तब आप करें, नहीं तो हो सकता है कि आपको नींद आ रही हो उसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह हो जाए. तो ये जो है इसमें से अधिकतर ब्रांड इनके जो है, एक आधी शायद कोई हो जो फेक्सोफेनिडीन वगैरह जो प्रिस्क्रिप्शन पर मिले आपको ओवर द काउंटर ना मिले, लेकिन अधिकतर जो है जो ओल्डर ब्रांड्स हैं पिरिटोन है या लोराटिडीन सेट्रिजिन, ये सब आपको ओवर द काउंटर मिलते हैं. और जैसा मैंने आपको बताया अभी कि अब प्रिस्क्रिप्शन इनका नहीं दिया जाएगा आपको, आपको खरीदनी ही पड़ेगी. और ये बच्चों के लिए भी है तो बच्चों के लिए सिरप है तो वो भी आपको खरीदना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा. और जो लोग बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है जिन्हें प्रिस्क्रिप्शन चार्ज नहीं देने होते हैं या अनएम्प्लॉयड लोग हैं या किसी बेनिफिट्स पर हैं, लेकिन तब भी आपको इसके पैसे अब देने पड़ेंगे, केमिस्ट के यहाँ खरीद कर लेनी पड़ेंगी. तो ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो उनको कहा जाता है कि ये इसको अवॉइड करें, इसको ना लें, बट उनके अलावा बाकी लोगों के लिए ये काफी अच्छी दवाइयां हैं. कुछ लोगों को इसके सिम्टम्स होते हैं कि थोड़े दिन के लिए होते हैं, उन्हें एक दो दिन खाई ठीक हो जाते हैं तो बंद कर देते हैं और फिर रखे रहते हैं, फिर होता है तो फिर जिस दिन जरूरत हुई उस दिन ले लिया वरना ना लिया. कुछ लोगों के सिम्टम्स सीरियस होते हैं, काफी लंबे समय तक चलते हैं, तो फिर वो उनको ये बताया जाता है कि अब आप इंतजार ना करें कि प्रॉब्लम होगी तब खाएंगे, आप पहले से ही इसको शुरू कर दें और रोज लें. फिर ये नहीं कि एक दिन लिए एक दिन नहीं लिए, तो महीना दो महीना तीन महीना जैसा आपका हे फीवर का पैटर्न है आप कंटिन्यूअस इसको ले सकते हैं. काफी सस्ती होती हैं, महंगी नहीं होती हैं. ब्रांड्स होते हैं अलग अलग और कुछ ब्रांड बहुत महंगे होते हैं, कुछ ब्रांड बहुत सस्ते होते हैं. आप अपने केमिस्ट से कह सकते हैं कि सस्ता वाला ब्रांड दें, वो दवा वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है. चाहे वो 2 पाउंड की एक महीने की मिल रही हो चाहे 11 पाउंड की मिल रही हो, यूजली टैबलेट सेम ही होती हैं. तो आप केमिस्ट से अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो उनसे कह सकते हैं कि सस्ते ब्रांड वाली सेट्रिजिन वगैरह दें. तो ये जो टैबलेट्स या लिक्विड की बात हुई. इसके अलावा फिर नाक में डालने वाले स्प्रेस होते हैं, ड्रॉप्स होती हैं, और वो खास तौर पर जो नाक के अंदर की जो खुजली है, छींकें आ रही हैं या ब्लॉकेज है, उसको काफी फायदा करते हैं. इनको भी रेगुलर लेना होता है. इसमें जो स्टीरॉयड वाले होते हैं जैसे कि बैकोनेज एक सबसे कॉमन है जो यूज किया जाता है, और अगेन वो भी आप केमिस्ट से खरीद सकते हैं डायरेक्ट, आपको उसके प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है. ये फौरन इफेक्ट नहीं करते हैं, तो अगर आज आपने डालना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि शाम तक आपको आराम आ जाएगा, हो सकता है आ जाए लेकिन आमतौर पर नहीं. तो आपको जो है इसमें कुछ दिन लगते हैं, कई बार एक दो वीक लग जाते हैं कि जब तक इसका फायदा आना शुरू होता है, तो आपको थोड़ा सा हिम्मत के साथ पेशेंस के साथ इसको कंटिन्यू करते रहना होगा. जी
चलिए अब लौट कर आते हैं हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब की तरफ. मिड मॉर्निंग शो आप सुन रहे हैं, मेरे साथ मैं अंबर, मेरे सामने डॉक्टर राजीव वाधवा जी जो हर समय हर हफ्ते अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं हमारे स्टूडियोज में यहां, और अब तो हमारे रेगुलर मेंबर बन चुके हैं पिछले कुछ समय से, और इसीलिए अब मैं उनको उस तरह से नहीं संबोधित करती जैसे पहले करती थी. तो डॉक्टर साहब अब हमने बात को जहां छोड़ा था क्योंकि आखिरी 8 मिनट हैं हमारे पास.
जी तो जल्दी से बात करते हैं अंबर जी, थोड़ा सा शॉर्ट में क्योंकि इसे आज खत्म करना चाहते हैं. अगले हफ्ते हम लोग डिमेंशिया के बारे में बातचीत करेंगे. तो डिमेंशिया कई तरह का होता है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया उसमें से एक होता है और भी दूसरी तरह के डिमेंशिया भी होते हैं. तो जनरल डिमेंशिया की बात करेंगे और फिर उसमें अल्जाइमर्स की बात भी करेंगे. तो हे फीवर के ट्रीटमेंट में टैबलेट्स के बारे में या लिक्विड्स के बारे में जो दवाइयां हैं मुंह से लेने वाली उसके बारे में बात की. इसके अलावा हमने कहा नोज स्प्रे होते हैं या ड्रॉप्स होती हैं, अधिकतर स्प्रे होते हैं तो ये काफी इफेक्टिव होते हैं. इनको असर आने में जैसा मैंने बताया थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. ऐसा नहीं है कि एक ही दो दिन में आपको आराम आ जाए. काफी इफेक्टिव होते हैं, अधिकतर लोगों को इससे बहुत आराम होता है और आपको डेली लेना है इसको. तो क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, ये उस दिन वाले फायदे का नहीं है कि आज ही लें और अभी फायदा हो जाए. तो इसको सीजन के दौरान इसको रोज आपको लेना है. वो अलग अलग होते हैं, कुछ दिन में एक बार लेने वाले हैं, कुछ दिन में 2 बार लेने वाले हैं. तो आपको केमिस्ट आपको बताएंगे कि कौन सा किस समय लेना है, एक स्प्रे लेना है कि 2 स्प्रे लेने हैं. तो और कई तरह के होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं. और इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो फिर आई ड्रॉप्स होती हैं. तो जिनकी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, आंखों से खुजली आ रही है, लाल आंखें हो गई हैं, पानी काफी आ रहा है, तो उसमें कई तरह की ड्रॉप्स होती हैं, वो भी आपको केमिस्ट से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकती हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए इसमें आपने पहले टैबलेट शुरू करनी है। टैबलेट सारे सिम्टम को फायदा पहुंचाती है, आपकी नाक में, गले में असर करेगी, आंखों में भी असर करेगी टैबलेट, या बच्चों के लिए लिक्विड भी है अगर सेम चीज। और लेकिन अगर आपको उससे फायदा नहीं हो रहा है तो आप पहले वो शुरू करें, अगर उससे फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप अगर नाक में ज्यादा प्रॉब्लम है तो नोज स्प्रे लें, आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आई ड्रॉप्स लें, और अगर दोनों जगह प्रॉब्लम है, आंखों में भी प्रॉब्लम है नाक में भी प्रॉब्लम है, तो आप फिर तीनों चीजें लें, टैबलेट या लिक्विड भी लें, खाने वाली जो दवा है, आई ड्रॉप भी लें और नाक में डालने वाला स्प्रे भी लें। तो ये इसके अंबर जी मेन ट्रीटमेंट हैं जो आम तौर पर लोगों को इससे फायदा हो जाता है, 90-95% लोगों को इससे ज्यादा और कोई जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों को काफी सीवियर होता है और वो काफी एक्सट्रीम तक जाते हैं, एक नाक में वॉश आउट करने की होती है, उसको नाक के अंदर लोग सफाई करते हैं ताकि पोलन वहां से रिमूव किया जा सके, तो उसका पूरी एक डिवाइस सी होती है, वो प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं होती है, वो आपको केमिस्ट से आप बात करेंगे तो उसमें पूरा एक सिस्टम सा होता है जिससे आप नाक के अंदर पूरी सफाई करते हैं, वो ले सकते हैं। और फिर जिन लोगों को बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम है और वो तीनों दवाइयां ले रहे हैं, टैबलेट्स भी ले रहे हैं फुल डोज में, आंख की दवा भी ले रहे हैं, नाक की भी ले रहे हैं, फिर भी उनकी तकलीफ नहीं आराम आ रही है, तो पहले हम लोग इंजेक्शन दिया करते थे, वो सीजन में एक बार एक इंजेक्शन दे देते थे और बस वो उनको फिर सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते थे। वो इधर पिछले कई सालों से वो अब हम लोग नहीं देते हैं, आपको एनएचएस पर वो नहीं दिया जाएगा। लोग कहीं जिनको इससे आराम होता था वो कहते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं आप, वो नाराज होते हैं आपने हमारा ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो जो रिसर्च है वो ये बताती है कि इससे फायदा कम होता है, नुकसान इसके काफी सीरियस बैड साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसीलिए इसको बंद किया गया है, इसकी और कोई वजह नहीं है। तो ये आपको आपके जीपी से मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन किसी को अगर बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, कि मान लो आपको बिल्कुल बुरा हाल है हे फीवर से, कोई दवा फायदा नहीं कर रही है और दो दिन बाद आपका कोई एग्जाम है या कोई बहुत जरूरी कोई काम है, तो फिर शॉर्ट टर्म स्टीरॉयड टैबलेट्स हम लोग कई बार दे देते हैं, कुछ 5 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए। वो रेगुलर नहीं है, वो हल्के सिम्टम्स में आपको नहीं दी जाएगी, वो बार बार नहीं दी जाएगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं दी जाएगी कि आप महीना भर खाते रहें, वो सिर्फ वन ऑफ, कभी 2-4 साल में एक बार आपको कभी बहुत जरूरत पड़े तो वो एक बार दी जा सकती है। अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो कंटिन्यूअसली सब दवाओं के बावजूद ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको स्पेशलिस्ट के पास, एलर्जी क्लिनिक में या इम्यूनोलॉजी क्लिनिक में आपको रेफर किया जाता है। वहां फिर वो और टेस्ट करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या किन एग्जैक्ट पोलन से या किस चीज से एलर्जी है, और फिर उसमें स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, वो आपको वहां दी जाती है, वो स्पेशलिस्ट ही देंगे। और वो अगर आपको हल्के सिम्टम्स हैं तो आपको रिफर भी नहीं करेंगे आपके जीपी, उसको जरूरत नहीं होती। ये नहीं कि हमें हर साल होता है तो हमें रिफर कर दीजिए, अगर बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं जो दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तभी आपको इसको रेफरल किया जाएगा, वरना नहीं। और चलते चलते अंबर जी आखिरी बात कि अगर आपको, जैसे हमने पहले पिछले हफ्ते भी बात की थी और शुरू में बताया कि हे फीवर और अस्थमा का काफी रिलेशनशिप होता है, तो अगर आपको अस्थमा है और आपको हे फीवर भी है तो हो सकता है कि आपका अस्थमा जो है हे फीवर के सीजन में बढ़ जाए। तो अगर आपको अस्थमा है और आपको हे फीवर के सीजन में बढ़ जाता है तो आप हे फीवर का फुल ट्रीटमेंट लेके हे फीवर को आप अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे तो आपका अस्थमा भी अच्छी तरह से कंट्रोल होगा। लेकिन अगर नहीं तो आपको अस्थमा की एक्स्ट्रा दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं, जो कि इनहेलर्स यूजुअली होते हैं, ब्लू, ब्राउन या और दूसरी तरह के इनहेलर, तो वो आप अपने जीपी से बात कर सकते हैं कि अस्थमा की एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट चाहिए आपको कि नहीं। तो ये अंबर जी हे फीवर के बारे में जानकारी।
और एक सवाल जो पिछले हफ्ते भी हमारे पास पहुंचा था कि ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है, टैबलेट, स्प्रे या कुछ और?
जी, तो जैसा मैंने बताया आप टैबलेट से शुरू करें और अगर उससे फायदा नहीं होता है तो फिर आप नाक का स्प्रे लें, अगर आपको नाक की तकलीफ है और आंख की तकलीफ है तो आई ड्रॉप लें, और अगर आंख और नाक दोनों की है तो तीनों चीजें लें फिर। जी
चलिए, आई होप कि जितने भी सवाल हमारे पास पहुंचे थे वो सारे के सारे हमने आंसर कर लिए हैं आज, राहते डॉक्टर साहब ने आंसर कर दिए हैं। और अगर फिर भी आपको लगे कि आपने कोई सवाल भेजा था लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाया तो एक बार फिर से हम ईमेल ही आपको दोहराना चाहेंगे कि ईमेल जो है आप कर सकते हैं डॉक्टर साहब को डायरेक्ट ईमेल कर दें, और कोशिश करें क्योंकि मंडे को डॉक्टर साहब आते हैं तो आते आते अपने साथ वो आपके प्रिंट आउट्स ले आए, आपके सवाल अपने साथ ही वो ले आए, तो कोशिश करें कि फ्राइडे तक या सैटरडे तक आपका ईमेल उनको पहुंच जाया करे। और ईमेल health@sabrasradio.com, लेट मी रिपीट दैट वंस अगेन, health @sabrasradio.com HEALTH@sabrasradio.com. और अगर आपके पास ईमेल की सुविधा नहीं है या आप खत भेजना पसंद करते हैं तो हमारा पता नोट कर लें, सबरस रेडियो 63 मेल्टन रोड लेस्टर, और खत के बाहर मिड मॉर्निंग शो अंबर या डॉक्टर लिख दें तो आपका खत जस का तस डॉक्टर साहब तक पहुंच जाएगा. और अब चलने से पहले एक मिनट है हमारे पास डॉक्टर साहब, तो अगले हफ्ते के बारे में ब्रीफ कर दें.
जी अंबर जी, तो अगले हफ्ते हम लोग डिमेंशिया के बारे में बातचीत करेंगे. डिमेंशिया काफी कॉमन प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, तो हम सभी किसी न किसी को जरूर जानते हैं जिनको ये तकलीफ है. तो डिमेंशिया कई तरह का होता है. अल्जाइमर डिजीज की हम बात करते हैं, अल्जाइमर एक तरह का डिमेंशिया होता है, और भी तरह के डिमेंशिया होते हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे. और मुझे लगता है कि दो हफ्ते तो मिनिमम ये बातचीत चलेगी ही, तो उसको अगले हफ्ते शुरू करते हैं.
तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया, इसके बारे में अगर हमारे श्रोताओं के पास कोई भी प्रश्न है, खत के जरिए भेज दें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. और अगर आप चलते प्रोग्राम में ही अपना सवाल भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको अगले हफ्ते व्हाट्सएप करना होगा. अभी से मत भेजिएगा क्योंकि वो फिर मैसेज आपका कहीं खो जाएगा. व्हाट्सएप के जरिए पूछना है तो इट हैज टू बी ड्यूरिंग द शो ओनली, या फिर डॉक्टर साहब के आने से आधा घंटा पहले आप भेज सकते हैं अपने सवाल, तो भी वो पहुंच जाएगा डॉक्टर साहब तक. लेकिन अभी से मत भेजिएगा ना, वो कहीं खो जाएगा. अभी से भेजना है तो ईमेल कर सकते हैं या खत लिख सकते हैं. और अब आखिरी 30 सेकंड्स में हम क्या कह सकते हैं अपने श्रोताओं को?
बस कुछ नहीं अंबर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबरस रेडियो का बहुत धन्यवाद कि आप लोग बिना किसी कमर्शियल इंटरेस्ट के, बिना किसी स्पॉन्सरशिप के ये पूरा एक घंटा प्रोग्राम देते हैं, तो इससे पब्लिक को काफी फायदा हो रहा है. मुझे मेरे मरीज बताते हैं, दूसरे मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं वो बताते हैं कि उनके मरीज भी इस प्रोग्राम को सुनते हैं. इंडिया और अमेरिका से भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, वहां भी लोग इसको रेगुलरली सुन रहे हैं. तो थैंक यू एंड थैंक यू टू सबरस रेडियो.
थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया आपका. जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर आते हैं, क्योंकि हर इंसान का वक्त कीमती तो होता है, लेकिन एक डॉक्टर जो न जाने कितनी जाने बचाता है, उस पर कितने दारोमदार होते हैं, वो सारा कुछ जो है होने के बावजूद आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर आते हैं हर हफ्ते. सो ह्यूज थैंक्स टू यू फ्रॉम myself and everyone listening. हम सब की तरफ से दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं. और वो थैंक यू मैसेज आ गया है जिनके सवालों का आपने जवाब दिया था, ये जो नाक के ऑपरेशन के बारे में कुछ पूछा था जिन्होंने, तो उनका थैंक यू मैसेज आ गया है. और नाम उन्होंने क्योंकि कहा था नहीं लेना, वैसे भी हम नाम नहीं मैंशन किया करते. सो थैंक यू सो मच फॉर your feedback and you have a lovely day and we wish you all the best. और जो भी आपका अपडेट होगा हमें जरूर बता दीजिएगा. And wish you all the best with everything and you take care as well. And once again डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच.
और आप
मिलेंगे तो चलिए अब मेरी और मेरे श्रोताओं की मुलाकात तो होती है प्रोग्राम के अगले भाग में न्यूज के बाद, जहां एक कंपटीशन होगा. अगर आप चाहें तो टर्म्स एंड कंडीशंस अभी से पढ़ सकते हैं या फिर अगले भाग में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब हम न्यूज का रुख करेंगे. मैं लौट कर आती हूँ न्यूज के बाद.
1260 AM. Digital radio. On your phone.